tadi?
Bapak. बृहस्पति दशा के बारे में बाबा ने बताया बृहस्पति दशा के बारे में माना बाबा की छत्रछाय की दशा है ना बाबा बृहस्पति दशा में
बृहस्पति कौन है
सागर तो
बृहस्पति का शुद्ध अर्थ है बृहस्पति छोटा मोटा पति नहीं जैसे राजाएं होते थे 100-200-400 रानियां भी रखते थे तो बड़े पति हो गए ना लोग क्या समझते थे ये बहुत पत्नियों का बड़ा राजा लेकिन दुनिया में जितने राजाएं हुए हैं ढेर की ढेर रानियां रखने वाले उन सबका पति पतियों का भी पति इतनी पत्नियां दुनिया में कोई और रख ही नहीं सकता और चलो कोई रखता भी हो तो उनके साथ निभा सकेगा स्नेह करना बड़ी बात नहीं है लेकिन स्नेह को संबंध को
निभाना
बड़ी बात है वो निभाने का कार्य वो एक ही कर सकता है जिसे भगवान कहा जाता है आया समझ में हाँ उसको कहेंगे दुनिया का बड़े से बड़ा प्यार का सागर क्या वो जोर जबरदस्ती किसी को कंट्रोल नहीं करता कैसे कंट्रोल करता है प्यार का सागर है इसलिए उसको बृहस्पति कहते हैं उसकी दशा में आएंगे तो कभी घाटा
नहीं हो
घाटा नहीं हो सकता
उसी दशा में अगर शनि का साढ़े सात आ गया तो इसकी प्रभाव उनमें
वो अपने आप नहीं आता है
शनि का
कोई पत्नी की जिंदगी में कोई दूसरा इंटरफियर अपने आप कर सकता है या दोनों हाथ से ताली बजती है
दोनों हाथ
तो फिर आ नहीं जाता है उसको निमंत्रण दिया जाता है क्या कहा निमंत्रण दिया जाता है तब उसकी हिम्मत पड़ती है दरवाजे पे पांव रखने की
प्रभाव पड़ती है बाबा बृहस्पति देश में सारे सदी का प्रभाव पड़ जाता
होता है
होता नहीं बाबा
होता है लेकिन कब होता है तब ही होता है जब उसको निमंत्रण दिया जाता है कोई भी ग्रह की दशा हो ग्रह सब एक जैसे पावरफुल हैं या पावर में अलग अलग हैं अलग अलग हैं ज्ञान न होने के कारण परख शक्ति न होने के कारण और परख शक्ति न होने का मूल कारण है ज्ञान को न धारण करने के कारण या बाप को न पहचानने के कारण और ग्रहों के चक्कर में फंस जाते तो उन ग्रहों की दशा में अंदर आ जाते ये प्रैक्टिकल बातें हैं अभी भी ऐसे ही चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है और
कलयुग में दास क्यों नहीं दिखाते बाबा
कलयुग में पाप इतने बढ़ जाते हैं स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि परमार्थ करते ही नहीं है जो जिम्मेवारी का ताज मिले संगम युग में जिसने जितना ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की जिम्मेवारी उठाई है, उनको जन्म जन्मांतर उतना ही बड़ा ताज मिलता है। ये ताज द्वापर युग तक सीमित रहता है। द्वापर युग तक जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो सुखी रहती है, कलयुग में सुखी नहीं रह पाती। ताज राजाई का ताज, जिम्मेवारी का ताज कभी इस्लामी छीन लेते हैं, कभी मुगल छीन लेते हैं, कभी क्रिश्चियन छीन लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? हैं? इसलिए ऐसा होता है कि जब चारों युगों की शूटिंग हुई थी तो कौन सी आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान ले रही थी? ईश्वरीय ज्ञान को कौन सी आत्माओं ने ज्यादा समझा था? सूर्यवंशियों ने ज्यादा समझा, चंद्रवंशियों ने ज्यादा समझा, इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन किसने ज्यादा समझा? और सूर्यवंशी सबसे पुराने भी है, जो इस्लामी है और जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत बाद में आए हैं। तो जो नए नए आए हैं, बाद में आए हैं, उनकी बुद्धि सात्विक होगी या पुराने पुराने जो जीर्ण बूढ़े हो गए, तमो प्रधान बन गए, उनकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी?
तमो प्रधान बनने तो श्रेष्ठ नहीं होता
है। हाँ जी, तो कलयुगी शूटिंग तक पहुँचते पहुँचते ये सूर्यवंशी आत्माएं जरा जीर्ण हो जाती है, तामसी बन जाती है। कैसे बन जाती है तामसी?
अनेक जन्म लेकर?
नहीं, अनेक जन्म तो लेते हैं, लेकिन अनेक जन्म लेने में जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन और धर्मों की आत्माओं के संग के रंग में फंस जाते हैं, बाप को छोड़ देते हैं, उनके संग के रंग में आकर के ये बड़े कामी क्रोधी लोभी मोही बन जाते हैं। अरे इतने ऊंचे बाप के बच्चे तो ये इतने नीचे कैसे गिरते हैं?
अगर नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचे,
वो एक अलग बात। मूल बात है कि बड़े आदमी का बच्चा कुसंग में फंसता है और छोटे आदमी का बच्चा कुसंग में फंसता है, तो ज्यादा कौन गिरेगा?
बड़े आदमी।
तो बड़ा आदमी शिव बाप, उससे बड़ा बाप तो दुनिया में कोई होता ही नहीं। तो उसके जो बच्चे हैं वो कलयुग की शूटिंग आते आते संग के रंग में आते आते कुसंग में गिरते गिरते बहुत तमो प्रधान गलीज बन जाते
हैं।
हाँ जी, कलयुग में आकर के ऐसा ही होता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद किसकी राजाई चली भारत में? भारत का कोई सम्राट बन पाया है? जो अपन को देवी देवता सनातन धर्म के कहते हैं, उनमें कोई पूरे भारत का सम्राट बन सका?
नहीं
नहीं, चंद्रगुप्त बना था, वो तो द्वापर के आदि में बना। अशोक बना, वो भी द्वापर में बना। यहाँ तक आते आते ये भारतवासी अति के तमो प्रधान बन जाते। अति के तमो प्रधान बन जाने के कारण ये शासक बनेंगे या दास दासी बन जाते हैं? अपन इंद्रियों के ही दास बन जाते हैं, तो राजाओं के भी दास बन जाते हैं।
मुरली में उसको ऐसे कंपेयर किया जैसे एससी एसटी निम्न जाति जो है।
हाँ जी,
सूर्यवंशी को ऐसे
शूद्र बन गए। और
जयचंद्र कौन है बाबा? जयचंद्र, पृथ्वीराज जयचंद्र।
जयचंद
वो कौन है?
जय माने जीत हो गई, अचंद माने चंद्रमा, ऐसा ज्ञान चंद्रमा जिसकी जीत हुई। अच्छा, यज्ञ के आदि में उसकी जीत हुई या नहीं हुई है? 47 में ज्ञान चंद्रमा की जीत हुई या नहीं हुई? अरे जीत हुई ना, तो वो जयचंद है। क्या है? जयचंद। पृथ्वीराज चौहान से टक्कर होती है।
और रानी संयुक्ता, और रानी संयुक्ता
संयोगिता, संयोगिता उसकी पुत्री है,
जयचंद्र का पुत्री,
जयचंद्र की पुत्री है। तो ब्राह्मण संगम युग दुनिया में पुत्री है या नहीं? पुत्री है। कहाँ का राजा था जयचंद?
नहीं,
नहीं, कन्नौज का राजा था। कन्नौज, कट नौज, नौज बिल्ला कहते हैं ना। क्या नौज बिल्ला लगा रखा है, लड़ाई झगड़ा लगा रखा है। कट माने कितना नौज बिल्ला लगाया है। हनुमान का पार्ट है ना, किसका? ब्रह्मा का। हनुमान जो है वो बचपन में बहुत जिज्ञासाएं करता था, बहुत प्रश्न पूछता था या नहीं है? बहुत प्रश्न पूछता, उसके प्रश्नों का कहीं कोई समाधान ही नहीं मिलता था। आखिरी उसके प्रश्नों का समाधान कहाँ मिला? ज्ञान सूर्य शंकर के पास जाकर के, शिव शंकर भोलानाथ जिसे कहते हैं, वहां से समाधान मिला। तो टैली करना है, हिस्ट्री को भी टैली करना है ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में। टैली करेंगे तो और ज्यादा खुशी आएगी। तो उस समय जयचंद के समय में कौन भारत का सम्राट था? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के तख्त पर विराजमान था। वो पृथ्वीराज चौहान के बाद फिर कोई भी भारतीय राजा भारत का सम्राट नहीं बन सका। छोटे मोटे राजा ने भले बनते रहे हो, उनको भी कोई न कोई के अधीन रहना पड़ता था। अगर कोई को अधीन नहीं रहना पड़ा कोई राजा को, या कोई अधीन नहीं हुआ, तो वो एक ही पार्टधारी है, नारायण वाली आत्मा, जिसके लिए शास्त्र में गायन है कि नारायण की कभी भी हार नहीं हुई किसी युद्ध में, हर युद्ध में विजयी हुआ। संगम युग में भी विजयी होता है तो द्वापर कलयुग में भी विजयी रहता है, हार नहीं मानता। ऐसे कोई राजा हुए या नहीं हुए हिस्ट्री में?
एक ही बाबा
जी। एक क्यों है?
हार नहीं मानता।
महाराणा प्रताप है, उसने अकबर से हाथ में हार नहीं मानी।
जन्म ना
शिवाजी है, शिवाजी जिन्होंने मुगलों से हार नहीं मानी।
ये सब तो साकार बात,
इसलिए इन सारी बातों को जो हिस्ट्री में आई है, शास्त्रों में आई है, उनको संगम युग से टैली करना चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं शास्त्रों का सार बताता हूँ। मनुष्यों ने तो उल्टा अर्थ करके निस्सार बना दिया, अर्थहीन बता दिया। मैं उसका आकर के सही अर्थ बताता हूँ।
आत्मा का एक ही है बाबा, जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स
हैं। किस आत्मा में?
साकार बाप में, साकार बाप की ये त्रेसठ जन्मों की पाठ है ना, जो ही शिवाजी हो यानी पृथ्वीराज सिंह हो यानी महाराणा प्रताप हो, ये सब साकार बाप की पाठ है। आत्मा का यही है सत्यनारायण।
मना जो कभी हारता नहीं है, भले कितना ही संघर्ष करना पड़े, सारा जीवन भी संघर्ष करना पड़े तो भी हार मानने वाला नहीं है। नीचे से नीची स्टेज में भी आ जाए, दुनिया की नजरों में, तो भी ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है एक ही जन्म के पुरुषार्थ में। इतना तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार है उसके अंदर। कौन से जन्म में वो संस्कार भरे? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में शिव बाबा की सीमत पर चल करके वो संस्कार भरे हैं।
बाबा, बाप किस तरह के बच्चन को पसंद करता है बाबा?
जो बच्चे बाबा की याद में रहते, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अब बेचारी बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, ज्ञानी बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, पवित्र रहने वाले बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। और
भगवत गीता में प्रथम अध्याय है अर्जुन की विषाद अध्याय, ये है कि धर्म युद्ध है ना बाबा
है?
ये धर्म युद्ध है ना बाबा?
हाँ,
ये धर्म युद्ध में अर्जुन अपने विकारों पर जीत कर रहा।
अर्जुन ने
अपने विकारों पर जीत कर रहा,
जीत पाया।
हाँ, क्यों विषाद विषाद हो गया बाबा
है?
पहले विषाद है ना बाबा अर्जुन?
पहले
अर्जुन विषाद विषाद अध्याय है ना बाबा?
विषाद इसलिए होता है कि जो जन्म जन्मांतर विकारी बनता रहा है तो बुद्धि दुखमयी बनेगी या सुखमयी बनेगी? तो विषाद नहीं पैदा होगा। और कमजोरी आती कहाँ से है?
विकार से।
विकारों से कमजोरी आती है। ये रावण का संग करने से भी कमजोरी आती है। अपने रूप को भूल गए कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा है। अपने को क्या समझ लिया?
देह समझ लिया।
मैं देह हूँ। कोई भी जन्म लिया हो, राजा का जन्म लिया हो तो मैं राजा हूँ, मेरा ये कुल है, मेरे कुल में एक लिंग स्वामी की पूजा होती आई है, दूसरे लिंग को नहीं माना है। अरे बड़ा नशा चढ़ा हुआ है, ये देह की परंपरा का नशा चढ़ा है, दैहिक वंश का नशा चढ़ा हुआ है या आत्मा का नशा चढ़ा हुआ है? दैहिक वंश का नशा चढ़ा हुआ है। तो देह जो है वो विनाशी है, पांच तत्वों की है। विनाशी देह में बुद्धि योग रहने के कारण बुद्धि कैसी हो गई? नीचे गिरती चली गई, वृक्ष बुद्धि हो गई। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात बुद्धि नाश।
आखिरी में तो गीता ली
है
बाबा, उसमें तो अर्जुन कहते हैं
स्मृति लब्धा, आखिर में कहते हैं तो आज में भी तो ऐसे ही होंगे, आदि सो अंत होते हैं या नहीं। तो जब वो आत्माएं जो नष्टो मोहा की स्टेज को प्राप्त करने वाली हैं और धर्मराज की सजाओं को खाने वाली नहीं है, वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा जो आठ आत्माएं हैं उनकी पहचान ही है कि जब से ज्ञान में आई होंगी तब से उनका देह से मोह नष्ट हुआ पड़ा है औरों के मुकाबले, माने अपनी देह की तरफ ध्यान नहीं देंगी, उतना देह के पदार्थों की तरफ ध्यान नहीं मून देंगी कि नहीं मुझे खिचड़ी मिलेगी तो हम नहीं चल पाएंगे ज्ञान में, हमारा यहाँ से ट्रांसफर कर दो, उस सेंटर में इंचार्ज बहुत अच्छा भोजन बना के खिलाती है, देह के पदार्थ से बुद्धि नष्ट मोह, देह के संबंधियों से भी बुद्धि नष्ट मोह, जब से ज्ञान में आए होंगे सारे तन की ताकत, धन की ताकत, मन की ताकत कहाँ लगाई होगी, देह के संबंधियों में नहीं लगाई होगी, उनका तन मन धन समय संपर्क संबंध सारा कहाँ लगा होगा, उनके प्रैक्टिकल जीवन को देखो, ईश्वरीय सेवा में ही लगा होगा। हाँ
संस्कृत गीता में भी आते हैं, संस्कृत गीता में भी आते हैं काम एष क्रोध एष अनुरूपण समुद्भवा, ये भी कहा है मन जीत जगत जीत और इंद्रिय जीत जगत जीत और काम जीत भी जगत जीत, सो नष्टो काम और नष्टो क्रोध क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं?
काम में तो बुद्धि लगी हुई है, काम को भस्म नहीं करना है, कामना को देवताएं भी भस्म नहीं करते, कामना को जो तामसी कामना बन गई है उसको सात्विक बनाना है, क्या तामसी कामना बन गई है, दैहिक सुख की कामना बन गई है, देह के संबंधियों से सुख लेने की कामना हो गई है, देह के पदार्थों से सुख लेने की कामना हो गई है, वो तामसी कामना है, उस तामसी कामना को सात्विक बनाना है, क्या सात्विक बनाना है, आत्मिक स्नेह होना चाहिए, आत्मिक स्नेह वो दैहिक स्नेह से परे है, आत्मिक स्नेह का कनेक्शन आत्मा के बाप से है, और
महावीर बनने लिए क्या पुश अप करना है बाबा,
क्या
महावीर बनने लिए क्या पुश अप करना है बाबा,
वीर क्या करता है, वीर क्या करता है, है युद्ध करता है, वीर किसे कहा जाता है, जो युद्ध करने वाला है और कभी हार मानने वाला नहीं है उसे महावीर कहा जाता है, कैसे युद्ध करना, माया माने, माया माने अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों से युद्ध करना है, इनको छोड़ करके नहीं भागना है, सन्यासियों की तरह छोड़ करके भागने वाले को महावीर कहा जाता है, या घर गृहस्थ में रह करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतने वाले को कहा जाता है, हैं? जीतने वाले को कहा जाता है, तो महावीर कैसे बनना है,
एक बाप दूसरा
नहीं, हाँ एक बाप दूसरा न कोई, ये बुद्धि में रखना है, लेकिन युद्ध पूरा करना है, काम से क्रोध से लोभ से मोह से, इनसे युद्ध करते समय भागना नहीं है, जैसे ब्रह्मा कुमारी यहाँ घर बार छोड़ करके भाग खड़ी हुई, सन्यासी बन गई या गृहस्थी बन गई? सन्यासी बनी हुई। अब सन्यास में रह करके युद्ध किससे करेंगे? जंगल में रहेंगे तो विकारों से युद्ध करने की बात ही नहीं।
महाभारत जब अर्जुन और कर्ण द्वंद्व युद्ध करते हैं ना, अर्जुन और कर्ण जब द्वंद्व युद्ध करते हैं ना, तब अर्जुन को भगवान ने अपनी सारथी बनाई और कर्ण ने शल्य को अपनी सारथी बनाया।
कर्ण ने
शल्य को अपनी
शल्य को बनाया,
अपनी सारथी बनाया।
शिला से बनता है शल्य। शिला कैसी होती है?
जैसे कि रॉक
होती है, पत्थर की तरह होती है। क्या
पत्थर
दिखने वाली नहीं होती है, लेकिन जड़त्व में ही बुद्धि होती है या चैतन्य बुद्धि होती है? हाँ, तो बहुत अंतर है भगवान सारथी में और शल्य में।
कर्ण की सारथी शल्य हो गया बाबा। कर्ण तो कर्ण की सारथी होती है ना।
हाँ जी,
तो कर्ण तो सब ब्रह्मा के पार्ट है।
हाँ जी, ब्रह्मा ब्रह्मा जो है वो कान से सबसे जाती सुनता था ना, और कान से सबसे पहले सुनता था। अभी भी जो भी एडवांस ज्ञान है, जहाँ कहीं भी राम कथा होती है तो शास्त्र में गायन है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान पहले उपस्थित हो जाते। तो वो कान से सबसे पहले सुनते हैं और सबसे जास्ती सुनते हैं। इसलिए वो कर्ण है। कर्ण दसों इंद्रियों में सबसे जास्ती सुनने का काम किसका है? कान। और सबसे पहले कौन सुनता है?
वही
कान ही सुनता है।
और इनकी सही है सारी सही है।
बाप हर एक पार्ट को नहीं बताएंगे, खास खास बड़े बड़े पार्ट धारियों को इशारा देते हैं, नाम भी नहीं बताते। हाँ, और
महादेव सीरियल में है, महादेव सीरियल में जहाँ महादेव प्रत्यक्ष होने समय में पहले धुआं निकलता, बाद में डब्रू बनता और बाद में महादेव प्रत्यक्ष होते। महादेव सीरियल में जहाँ महादेव प्रत्यक्ष होने समय पर पहले धुआं निकलता, बाद में डब्रू बनता, बाद में महादेव प्रत्यक्ष।
हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो धुआं है ना, धुआं वो आँखों को क्या कर देता है? अरे धुआं अगर ऐसा कमरे में बहुत भर जाए,
कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई दिखाई नहीं पड़ता।
गैस का सिलेंडर फोड़ दिया जाए, पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले जब बहुत भीड़ हो जाती है और मारामारी पत्थरबाजी हो जाती है तो पुलिस क्या करती है? गैस का गुब्बारा छोड़ देती है, चारों तरफ गैस ही गैस, गैस ही गैस, धुआं ही धुआं। तो भगवान जब आते हैं तो ग्लानी का धुआं फैल जाता है। बोलो फैलता है कि नहीं
है? फैलता है,
फैलता है। बाहर की दुनिया में ही फैलता है या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी फैलता है और एडवांस की दुनिया में भी फैलता है? है, चारों तरफ धुआं फैल जाता है। भगवान प्रत्यक्ष होने से पहले तो धुआं फैला हुआ है या नहीं है? ये ग्लानी का धुआं है, आंखें अंधी हो जाती हैं, सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती है और डबरू बजता है। वो सिर्फ है देवताओं का ही रक्षक है या राक्षसों का भी रक्षक है? राक्षसों का भी बाप है यह सिर्फ देवताओं का ही बाप है?
दोनों का बाप
है, दोनों का बाप है। दोनों को सपोर्ट करेगा या एक पार्टी को ही सपोर्ट करेगा, दोनों को सपोर्ट करता है तो कैसा बजेगा? दोनों तरफ बजता है। और फिर बाद में प्रत्यक्षता होती है। हाँ जी
पापा, भगवान ने विश्व रूप दिखाया, जब भगवान ने अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप
दिखाया,
तब अर्जुन ने काम
दिया,
अर्जुन ने काम दिया, क्यों क्या काम करेगा बाबा? वो भगवान को अपनी साथी मानकर रखते
हैं
ना,
इसलिए कांपता है कि वो तो भगवान को अपना सखा मित्र समझता था, और मित्रता करके समानता आ जाती है। जब समानता समझी तो फिर थोड़ा उल्टा पलटा भी बोला जाता है कि नहीं? समानता समझ करके उल्टा पलटा कुछ बोला जाता है या नहीं? बोला गया। तो ये देख के कि अरे ये कौन है और मैं कौन हूँ, कांप गया। और आज हिस्ट्री में तो कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली, कोई छोटा प्रजा का वर्ग का आदमी राजा के सामने लाया जाए तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे चलो उनकी तो बात छोड़ दो, किसी बड़े साहूकार के घर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पुलिस को लेकर आ जाए तो क्या हालत हो जाती है? हालत खराब हो जाती है। ऐसे ही है, कहां नर और कहां नारायण, नहीं नरको नारायण बनाने वाला, बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। और
बाबा बुद्ध ने आत्मा परमात्मा का जिक्र क्यों नहीं किया बाबा?
है क्योंकि वो सूर्यवंशी था या औरवंशी था, थर्ड क्लास धर्म का था या फर्स्ट क्लास धर्म का था? अल्लाह के द्वारा स्थापन किया हुआ जो अव्वल नंबर का धर्म है सूर्यवंश, देवी देवता सनातन धर्म का स्थापन करने वाला था या थर्ड क्लास धर्म का मुखिया था? कौन था? थर्ड क्लास था। इसलिए उसने न भगवान के द्वारा बताए हुए आत्मा को जान पाया, आत्मा की गहराई को भी नहीं समझ पाया, और आत्माओं के बाप को भी नहीं समझ पाया, स्वर्ग को भी नहीं समझ पाया कि भगवान आकर कैसे स्वर्ग रचता है। तो फिर वो वर्णन कैसे करेगा जब समझ ही नहीं पाया? भगवान बुद्ध ने कहते हैं कि सारा ढेर सारा साहित्य दिया ज्ञान का, और अच्छी अच्छी बातें ही सुनाई, अच्छे गुणधर्म सिखाए, लेकिन उन सब बातों के बीच में आत्मा का परमात्मा का स्वर्ग का जिक्र कहीं भी नहीं किया।
वो भी विधर्मी हो गए ना बाबू?
है जी,
वो भी विधर्मी हो गया, विपरीत
विधर्मी तो है ही, लेकिन विधर्मियों में भी इस्लाम धर्म से भी नीचा धर्म है। इस्लाम धर्म वाले तो निराकार को भले मानते हैं, लेकिन भगवान को मानते तो हैं, उनकी वाणी से साबित तो होता है कि भगवान की कभी साकार था। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, अब वो जानते नहीं है फरमाएगा कैसे अल्लाह मियाँ, है मुख का आधार लिए बगैर फरमाएगा क्या?
नहीं,
लेकिन बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो निराकार साकार में आता है फिर वाणी चलाता है।
हाँ। लोग भी निराकार को मानते हैं।
हाँ जी,
तो बौद्ध में बाद आ गए
हैं,
बौद्ध के बाद में आ गए
कृष्ण। हाँ, वो और भी नीचे प्रकृति के हैं, वो तो महादुष्ट है। क्या कैसे दुष्ट हैं? भारत की परंपरा रही है कि दूसरों को फालतू दुख नहीं देना है, अपने राज्य में सुखी रहना है, दूसरों के ऊपर फालतू आक्रमण नहीं करना। और किसी नीति क्या कहती है? हैं? सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना। हिस्ट्री में उन्होंने अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की या नहीं की? हैं? चाहे हिटलर हो, नेपोलियन हो, कोई भी हो, हैं? अलेक्जेंडर हो, सबने यही चाहा कि हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके रखें, हिंसा के द्वारा। तो कितना फर्क हो गया, कहां महात्मा बौद्ध धर्म के अनुयायी, वो अहिंसक है और वो हिंसक। हाँ जी, है
जो भगवत गीता में एक श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा
काम संकल्प वर्जिता। हाँ, यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सारे कार्य जिंदगी के सारे धंधे, जितने भी धंधे किए हों, जितने भी काम किए हों, वो काम संकल्प वर्जिता, काम विकार के संकल्प से रहित तो हों। ऐसा कोई दुनिया में है?
नहीं
नहीं है। अगर नहीं है भूल जाता है घड़ी घड़ी, अगर नहीं है तो काम जीते जगत जीत कोई हो ही नहीं सकता।
ये क्या रहा
नहीं, नहीं नंबर वार है
पूरा पूरा
इंद्रिय जीते जगत जीत है लेकिन थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं या ज्यादा होते हैं? राजाएं थोड़े होते हैं और प्रजा देर की देर होती है। तो यहाँ भी दुनिया में ये साबित हो जाता है कि ईश्वरीय ज्ञान लेकर के, राजयोग सीख करके, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले राजा बहुत थोड़े हैं, नंबर वार है। एक है 100% बाप समान, और बाप आते भी हैं यही विरुद लेकर के, क्या मैं तुम बच्चों को
आप समान
बनाकर जाऊंगा,
किसी एक
नंबर वार आप समान बना के जाएगा ना, सबको एक जैसा। स्कूल में सब बच्चे एक जैसे पास होते हैं कि नंबर वार पास होते हैं? नंबर वार पास होते हैं।
भगवान तो एक है तो भगवान का बच्चा भी एक
है। गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन। पहनौटी का एक ही बच्चा होगा या दो चार दस इकट्ठे सूर्या की तरह जन्म ले लेंगे? हैं? एक ही बच्चा। कहते हैं देव महादेव, फिर कहते हैं ब्रह्मा देव विष्णु देव शंकर देव, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। उन तीनों मूर्तियों में महादेव शंकर को कहते हैं। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? बड़ा बच्चा शंकर हुआ। बड़े बच्चे को ही भारतीय परंपरा में सदैव हिस्ट्री में राजा ही दी गई है। हिस्ट्री को उठा के देख लें, छोटे बच्चों को राजा ही नहीं दी गई, बड़े बच्चे को राजा ही क्यों देते हैं? क्योंकि बड़ा बच्चा जो है लंबे समय की पवित्रता की पावर से जन्म लेता।
दत्तात्रेय
क्या है? दत्तात्रेय क्या है?
तीन
मुख्य दिखाते हैं दत्तात्रेय को। हाँ,
टू शब्द है दत्तात्रेय।
दत्तात्रेय हाँ
जो मुखी नाम
है
तीन मुख है ना बाबा,
तीन मुख हैं
लेकिन दो शब्द कहते हैं दत्तात्रेय,
दो
दो शब्द कहते हैं दत्तात्रेय,
दो शब्द
दत्तात्रेय के शब्द में दो है ना बाबा, दो हिस्सा है दत्तात्रेय, दत्तात्रेय
दत्तात्रेय का नाम
है, त्रेय माने तीन के द्वारा दिया हुआ, दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा, तीन कौन ब्रह्मा विष्णु शंकर, यज्ञ के आदि में
पांच तो अभी नहीं है,
यज्ञ के आदि में तीन थे, ब्रह्मा भी था माता के रूप में था या पुरुष रूप में दाढ़ी मूछ वाले में था, माता के रूप में था, विष्णु भी था न्यूट्रल रहने वाला और शंकर भी था, तीनों ही थे, उन तीनों से किसने जन्म लिया
ब्रह्मा
प्रत्यक्ष हुआ सन 47 में, तो नाम बढ़ गया दत्तात्रेय, तीन के द्वारा दिया हुआ, ये विशेषता है उसमें क्या कि वो गुण ग्राहक था, कौन दत्तात्रेय गुण ग्रहण करता था कि कोई के अवगुण ग्रहण करता था, हैं? भले चारों ओर कुत्ते ही कुत्ते तो भी कुत्तपना धारण करता था या कुत्तों का भी गुण धारण करता था, कुत्तों में क्या गुण होता है, नहीं कुत्ता जो होता है मालिक के प्रति वफादार होता है, भले मालिक एक ही रोटी का टुकड़ा खिलाएगा तो भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, ये गुण ग्राहक था, इसलिए दत्तात्रेय प्रसिद्ध है, पालता भले कुत्तों को भी था, क्या कुत्ते जैसी कामी आत्माओं को भी पालता था, वो उसके चारों तरफ चक्कर काटती थी,
बाकी श्लोक तो पूरा नहीं हुआ, इससे सर्वे समारंभ का प्रसंग
प्रभाव, हाँ जी
ज्ञानाम की दग्ध कर्म समाह पंडित मुझा कहा,
अर्थ बताओ,
लेकिन बाबा ने साधारण रूप से
इसका अर्थ तो बता दो ताकि सबको पता चले,
ज्ञानाम की दग्ध कर्म,
हाँ
ज्ञान की अग्नि में जो विकर्म दग्ध होती है उसको ही पंडित कहा जाता है,
हाँ जी अपने पाप कर्मों को भस्म करने वाला पंडित कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है, किसको जिसके सारे संसार के जितने भी कर्म हैं कर्म इंद्रियों से किए हुए वो काम विकार के संकल्प से रहित हो, वो ज्ञानाग्नि से अपने पाप कर्मों को जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को भस्म करने वाला पंडित कहा जाता है। तो देखो जिसके अंदर काम विकार का संकल्प होगा या काम विकार भोगने वाला होगा उसकी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलेगा, ज्ञान का नहीं चलेगा, ज्ञान का संकल्प मात्र नहीं चलेगा, क्या संकल्प अगर चलता है जैसे सन्यासी पत्नी को छोड़ तो जाते हैं लेकिन जंगल में जाकर के स्त्री चोला याद आता है या नहीं याद आता है, याद आता है, काम विकार के संकल्प तो चलते रहते हैं, तो काम संकल्प वर्जिता कहाँ हुआ, काम विकास के संकल्प से रहित कहाँ हुआ, यहाँ तो बात है काम विकार का संकल्प भी ना आए, भले इंद्रियां जो है अपना कर्म करें, क्या इंद्रियां हैं तो कर्म करेंगी या नहीं करेंगी, काम इंद्रिय है तो काम विकार का संकल्प भी वो काम विकार का कर्म भी करेगी, लेकिन कर्म करते हुए भी मन बुद्धि को कंट्रोल करके एक बात की याद में लगाया जा सकता है या नहीं, प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता, लगाया जा सकता है। तो ऐसी प्रैक्टिस जो करने वाला है वो संकल्पों को जाम कर सकता है, उसके संकल्प चलेंगे ही नहीं। चलो कोई आदमी रसगुल्ला खाता जा रहा है, बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बने हुए और उससे बातचीत चल रही है, कहीं विदेश में बहुत बड़ा कारोबार स्थापन करना है, ऐसा बड़ा कारोबार जिसमें उसका सारा धन जाने वाला है, सारे संबंधियों की सारी ताकत, पत्नी बाल बच्चे सब उस कारी व्यवहार में कल ही जाने वाले, ऐसी प्लानिंग हो रही है, रसगुल्ला खा रहा है मुख से, बुद्धि कहाँ है, बुद्धि कहाँ चली जाएगी, बुद्धि वहाँ रखी हुई है जहाँ उसका धन जाने वाला है, जहाँ उसका तन जाने वाला है, जहाँ उसके तन के संबंध ही जाने वाले। तो फिर बाद में उसे वो रसगुल्ले का स्वाद याद आएगा, नहीं याद आएगा, क्योंकि बुद्धियोग उसमें था ही नहीं। जहाँ मन बुद्धि इंद्रियों के विषय में सहयोग नहीं करेगी, वहाँ इंद्रियों का कोई हिसाब किताब नहीं बन सकता
है। बांधेली माता
यही बात, बांधेली माताओं की, बांधेली माताओं का मन कहाँ लगा हुआ है,
शिव बाबा
में लगा हुआ है, और तन
पति
के अंदर में, तन की इंद्रियां भी जब चाहे तब पकड़ लेता है, जबरदस्ती है अपना सुख भोगता है, लेकिन सुख भोगने में इंद्रियों का स्वाद पति ले रहा है या पत्नी ले रही है, कौन ले रहा है,
पति,
पत्नी ले रही है, पत्नी स्वाद लेती है नहीं लेती है, उसका लक्ष्य है हमें तो भगवान चाहिए, हमें ये दुष्ट दुख देने वाला नहीं चाहिए। जो आत्म का प्यार नहीं करता है, ये देह का प्यार करने वाला है, नहीं चाहिए, तो बुद्धि हटी हुई है वहां से। तो जब बुद्धि हटी हुई है तो जो इंद्रियों का सुख है वो उसको याद रहेगा,
नहीं रहेगा।
गणेश चतुर्थी त्योहार मनाते हैं,
गणेश चतुर्थी
त्योहार मनाते हैं, दस दिन के बाद निमज्जन करते हैं, ये माता जी पूछ रही थी, वो करते
विसर्जन करते हैं,
निमज्जन करते हैं ना,
हाँ
वैसे क्यों करते थे ये माता जी पूछ,
हाँ हाँ पानी में डुबो देते ना, इसीलिए करते हैं कि संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं, तो जो भगवान बाप को पूरी तरह न पहचानने वाले हैं वो कोई देवियों को पूजने लग पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमारियों की पूजा करने लग पड़ते हैं, उनको तन धन धाम स्वर्ग परिवार सब कुछ अर्पण करते हैं। कोई गणेश हनुमान अथवा ब्रह्मा बाबा की पूजा करने लग पड़ते हैं, जो मुरली में बोला है, कोई मम्मा के पुजारी कोई बाबा के पुजारी, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो शिव बाबा दुरापा देते हैं कि देहधारियों को सब पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा का पार्ट किसका हुआ, गणेश का, उनकी 10 दिन पूजा होती है, क्या 10 दिन पूजा होती है, और लास्ट में जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है तो पोल पट्टी सबकी खुल जाती है, चाहे वो गणेश जी हो, हनुमान जी हो, देवियाँ हों, साफ की पोल पट्टी खुल जाती है कि अरे इन्होंने सबने नीचे गिराया था। असली चीज तो भगवान ही देने वाला, ऊंचा उठाने वाला, गति सदगति देने वाला तो भगवान ही है। तो जब असलियत पता चल जाएगी तो देवियों की मूर्तियों को, हनुमान की मूर्तियों को क्या करेंगे, क्या करेंगे, डुबोएंगे या नहीं डुबोएंगे? जो भी यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने वाले बैठे, उन्होंने पहले एडवांस ज्ञान मिलने से पहले ब्रह्मा कुमारियों की अच्छी पूजा की थी नहीं की थी? हैं? खूब पूजा की, लेकिन जब पता लग गया कि एडवांस ज्ञान देने वाला भगवान बाप आया हुआ है और भगवान बाप ये है, भगवान बाप उन्हें प्रैक्टिकल में मिल गया, तो फिर उनको त्याग दिया या कंधे पे चढ़ा लिया, क्या किया? त्याग दिया, डुबो दिया। नहीं डूबती है तो बुद्ध रूपी पाँव मार मार मर के, क्या बुद्धि से निकाला हुआ जो ज्ञान है ना, वो उनको सुना सुना करके उनको डाउन कर देते हैं, डुबो देते हैं। और
बाबा,
अरे कोई बोल रहा है, बोलने दो ना बाबा बाबा। हाँ,
डुरापा बाबा, डुरापा माने,
डुरापा माने किसी को उलहना देना, क्या है अंग्रेजी में? डुरापा देना, उलहना देना, ये हिंदी और उर्दू का शब्द है। उलहना देने का मतलब यह है, बाबा कहते हैं सबको संदेश दो, कोई बाद में ये न कहे अरे तुम हमारे रोज संसर्ग संपर्क में संबंध में आते थे और तुमको भगवान मिल गया, तुमने हमको नहीं बताया। इसको कहते हैं उलहना देना।
पॉइंट आउट कर रहे हैं क्यों हमको बताया नहीं बाप के बारे में।
उलहना देना, डुरापा देना, नहीं समझ में आया?
निंदा।
हाँ,
108 की माला है ना बाबा?
हाँ जी।
108 माला में जगदम्बा 108 की मान्यता है ना बाबा?
हाँ जी। जगदम्बा,
जगदम्बा 108 की मान्यता है ना बाबा?
108 की माला का मान्यता है?
मान्यता।
कौन सा मान्यता है?
मान्यता।
हाँ, विजय माला और रुद्र माला दोनों का मान्यता है या सिर्फ रुद्र माला का मान्यता है? दोनों का मान्यता है। विजय माला में आती है
रुद्रमाला
का मान्यता है,
परंतु जगदम्बा चंद्रवंशी की हेड है ना बाबा?
है
जगदम्बा चंद्रवंशी की हेड है ना?
अगर चंद्रवंशी की हेड जगदम्बा है तो जगदम्बा जो आदि में है सो अंत में पंजाब से निकलना चाहिए या चंद्रवंशियों से निकलना चाहिए?
चंद्रवंशी।
कहाँ से निकलती है?
पंजाब से
निकलती है। और
तो ये 108 की मान्यता के माला में बाएं ओर से सूर्यवंशी है और दाएं ओर में चंद्रवंशी।
अच्छा, है जिधर माला इधर घुमा दो तो सूर्यवंशी इधर हो गए, फिर इधर घुमा दो तो चंद्रवंशी इधर हो गए। हाँ,
उनका उनका नंबर 108 है ना बाबा?
हाँ जी।
तो चंद्रवंशी का हेड है तो भी उनका नंबर 108 है।
हाँ,
तो चंद्रवंशी में आगरा,
चंद्रवंशियों में, चंद्रवंशियों में, सूर्यवंशियों में जो अब्बल नंबर मनता होगा वो ज्यादा निश्चय बुद्धि होगा या लास्ट नंबर का मनता ज्यादा निश्चय बुद्धि होगा?
पहला नंबर ज्यादा निश्चय बुद्धि होगा।
ज्यादा निश्चय बुद्धि होगा। तो ऐसे ही रुद्रमाला में समझ लो कि रुद्रमाला में पहला मणका कौन है और लास्ट मणका कौन है?
जगदम्बा।
बस,
लेकिन जगदम्बा का नंबर ये 108
आपके बाप के नजदीक है, दोनों शिव बाप के दोनों ही समान रूप से नजदीक है। क्यों? क्योंकि जो बाप है वो स्थापना करने वाला भी है। क्या बाप क्या है? नई राजधानी स्थापन करने वाला है, और जो शक्तियां हैं वो जो नई राजधानी स्थापन होती है, बाप स्थापन करता है, वो नई राजधानी पुरानी बन जाती है, असुरों का कब्जा हो जाता है, उन असुरों का विनाश करने वाली है, आसुरी राजधानी का सत्यानाश कर देने वाली है। तो वो विनाशकारिणी है, विनाश होगा तो स्थापना प्रत्यक्ष होगी, या बिना विनाश हुए स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी?
विनाश होने के बाद
ही नई दुनिया प्रत्यक्ष होगी। इसलिए वो लास्ट मन का भी भगवान को उतना ही नजदीक है कि जो काम कोई भी नहीं करता है वो काम जगदम्बा करके दिखाती है।
लेकिन उनकी रैंक अगले मंत्रम से बहुत छोटा हो गया ना बाबा।
हैं?
उनकी रैंक 108 हो गया ना बाबा।
लास्ट रैंक हो गया,
लास्ट रैंक हो गया।
हाँ,
उनके रैंक अगला मंत्रम से बहुत छोटा हो गया ना।
हाँ,
क्यों छोटा हो गया? बहुत तो
इसलिए छोटा हो गया कि विनाश करना ज्यादा अच्छा है या स्थापना करना ज्यादा अच्छा है? स्थापना करना, मकान बनाना अच्छा है, मकान का निर्माण करना अच्छा है, या मकान ध्वंस करना अच्छा है?
मकान बनाना अच्छा।
मकान बनाने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं या मकान तोड़ने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं? किसको मिलते हैं? बनाने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ
बाबा, इस समय लास्ट में 4.5 लाख आत्माएं बर्फ में दबती है, जो इस स्थान पर दबती
है, वो 108 आत्माएं जो है एक धर्म एक देश की है या सारे वर्ल्ड की है? बीज
सारे वर्ल्ड का बीज।
तो सारे वर्ल्ड की जो बीज है संगम युग में, वो बीज जब तैयार हुए होंगे तो सारे वर्ल्ड में बिखरे हुए होंगे या एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे?
सारे जगह,
सारे वर्ल्ड में बिखरे हुए थे। क्यों? कोई सूर्यवंशी, कोई और वंशी। स्थापना कौन से वंश की होनी है? सूर्यवंशी की स्थापना होनी है, और वंशों का ध्वंस होना है। तो बीज का तो कभी ध्वंस होता ही नहीं। हाँ, बीज पर जो छिलका चढ़ा हुआ है वो छिलका उतर जाता है। कोई पे मोटा छिलका चढ़ा हुआ है और कोई पे पतला छिलका चढ़ा हुआ है। कोई में ज्यादा डंडे लगते हैं धर्मराज के और छिलका उतर जाता है, और कोई में कम डंडे लगते हैं और छिलका उतर जाता है। तो ज्यादा डंडे किसको लगते होंगे और कौन से बीजों को कम डंडे लगते होंगे धर्मराज के?
हैं?
नहीं, जो सूर्यवंशियों के नजदीक होंगे, जो सूर्यवंशियों के नजदीक होंगे, भारतीय धर्म मूल के होंगे, जैसे बौद्ध, सन्यासी, सिख, आर्य समाज वगैरह वगैरह, उनको कम डंडे, और जो लेफ्टिस्ट होंगे उनको ज्यादा डंडे। हिसाब है तो बताओ, जिन्होंने ज्यादा ग्लानी की होगी वो भगवान के ज्यादा नजदीक होंगे, या जिन्होंने कम ग्लानी की होगी, महिमा ज्यादा की होगी, वो भगवान के ज्यादा नजदीक रहेंगे अंत में? जिन्होंने कम ग्लानी की है वो भगवान के नजदीक नजदीक होंगे, नजदीक देशों में, कोई नेपाल में, कोई बर्मा में, कोई मलाया में, कोई लंका में, नजदीक होंगे। और जिन्होंने बहुत ग्लानी की है वो दूर देशों में पटके जाएंगे। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, भगवान का ठौर नहीं मिल सकता उनको। तो विनाश के टाइम पर दूर फेंके जाएंगे या नजदीक में रहेंगे? दूर फेंके जाएंगे। अब समझ में आया कि जो 108 के मणके हैं वो सारी दुनिया में फैले हुए होंगे, अंतिम विनाश के समय बर्फ जब सारी दुनिया को ढक लेगी या भारतवर्ष में इकट्ठे होंगे? हाँ,
मेरा बच्चा इतना मुझे गाड़ी की और दूसरी नहीं की भाई, सभी विधर में लोग
हैं।
मेरा बच्चे इतना ग्लानी की मुझे,
हाँ मेरे बच्चे ही मेरी इतनी ग्लानी करते हैं जितना दुनिया में कोई नहीं करते।
अरे ये सभी विधा भी बीज जो है।
हाँ जी, नंबर बात। और
बाबा,
हाँ
शंकर को ज्ञान की दीक्षा लेकर मिल गया ना?
हाँ जी,
जगदम्बा को दिखा देते हैं ज्ञान की दीक्षा।
दिखाते हैं
क्यों? जगदम्बा को दिखाते हैं बाबा ज्ञान की। शंकर ही बाबा मुरली में बताए हैं, शंकर को ही ज्ञान की दिखाना
पड़े। उसे ज्ञान नेत्र का नाम क्या है? शिव नेत्र नाम क्यों है? ब्रह्मा नेत्र नाम क्यों नहीं?
शिव
ही प्रवेश करता है ना रुद्रमाला के मणकों में, कौन प्रवेश करता है? पहले तो शिव है ना। तो यज्ञ के आज में जो जगदम्बा थी उसमें शिव ने प्रवेश करके वाणी चलाई या नहीं चलाई? चलाई। तो तीसरा नेत्र मिलता है। जैसे शंकर को तीसरा नेत्र है, महाकाली को भी तीसरा नेत्र है। ओम शांति। लेटर लेटर लो, ये लेटर लेटर, चलो भाई एक लेटर लेटर है बाबा। 2018 के बाद पुरुषार्थ बच्चों का चलेगा क्या? और माने 2018 में ही सब बच्चे संपन्न हो जाएंगे? पूछने वाले का मतलब ये है, अगर 2018 तक ही सब बच्चे संपन्न हो जाएंगे तो बाबा ने 40 से 50 वर्ष क्यों बोला तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने का? हैं? 40 वर्ष ही बोल देते, 10 वर्ष का मार्जिन क्यों दिया? हैं? इसलिए दिया कि सब बच्चे नंबरवार संपन्न बनेंगे, एक साथ संपन्न नहीं बन सकते। 2018 में एक के लिए बोला होगा या सबके लिए बोला होगा? 8 के लिए बोला होगा या सबके लिए बोला होगा? 8 के लिए बोला। लो, ये रात तुझको।